नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एंड से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में चुनाव और बूथ कैप्चरिंग। आप सभी ने बूथ कैप्चरिंग के बारे में तो सुना ही होगा, हो सकता है कि किसी ने देखा भी हो। मोटा मोटी कहा जाए तो हर कोई जानता है कि बूथ कैप्चरिंग क्या होती है और कैसे होती है। इसको और बेहतर तरीके से समझना हो तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि भारत हमें होने वाले सभी प्रकार के चुनाव में पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव की सुरक्षा एक अनिवार्य जरूरत है। सुरक्षा बल के बिना निष्पक्ष चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बीते 75 सालों में इस एक मसले पर कुछ भी नहीं बदला है। यह हाल तब है जब पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों को देखकर डरने की प्रवृत्ति आम है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुप सर जो है। सर, मोबाइल में स्वागत सर आपका।
जी योगेश भाई नमस्कार।
सर, ये बूथ कैप्चरिंग क्या है और चुनाव के दौरान जो बूथ कैप्चरिंग होती है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया सर?
बूथ कैप्चरिंग एक प्रकार की अपराध है, एक प्रकार का पाप है और एक प्रकार को लोकतंत्र को कलंकित करने वाला कार्य है। आज के डेट में बूथ कैप्चरिंग का तरीका बदला हुआ है। पहले जब बैलेट से चुनाव होता था तो जो किसी दल के या किसी गांव के या किसी क्षेत्र के जो बाहुबली होते थे अपने प्रत्याशी के लिए बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे और सारे लोगों का वोट अकेले मार देते थे। परंतु आज आप देखेंगे योगेश भाई कि बूथ कैप्चरिंग का तरीका बदल गया है। आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है और कहीं कहीं ईवीएम हैक होने का, कहीं कहीं ईवीएम हाईजेक करने का जो सवाल उठ रहा है, ये हो सकता है कि सही हो, परंतु आज तो बूथ कैप्चरिंग से ज्यादा खतरनाक तरीका लोकतंत्र के अंदर स्थापित हो गया है कि पहले तो दबंग जो है बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, आज तो मतदाता अपने मत को बेच रहा है और एक प्रकार से पहले ही बूथ कैप्चरिंग करा दे रहा है अपने मत को बेच करके। दूसरा, आप देखिए कि आज बूथ कैप्चरिंग के जगह पे विधायकों की कैप्चरिंग शुरू हो गई है। चुनाव जीतने के बाद विधायकों को पकड़ लिया जाता है, उनकी खरीद फरोख्त चालू हो गई है। अब तो सरकारें खरीदी जा रही है और सरकारें बेची जा रही है, तो यह भी एक नए प्रकार का कैप्चरिंग चल रहा है। जो बूथ कैप्चरिंग का सवाल है, अब उसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आया है और बूथ कैप्चरिंग में नाना प्रकार की जो समस्याएं थी उनको हल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से मत को प्रभावित करने का तरीका है और बूथ कैप्चरिंग भी एक प्रकार से मत को प्रभावित करने का तरीका था। आज मशीन के द्वारा मत को प्रभावित करने का तरीका अपनाया गया है, मशीन के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने का तरीका अपनाया जा रहा है और उसी को लेकर के मतदाता चाहे विपक्षी दल बाकी लोग भी यह मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट को दिखाया जाए और उसके बाद प्रूफ किया जाए। तो यह होनी चाहिए, लेकिन यह जो बूथ कैप्चरिंग है एक प्रकार का अपराध है, एक प्रकार का कलंक है, एक प्रकार के स्वच्छ लोकतंत्र की छवि को कमजोर करने का तरीका है। तो इसमें भी मतदाता को चाहिए कि मतदाता खुले दिमाग से मतदान करने जाए, जाति धर्म मजहब जो भी लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कड़ी है उसको त्यागे और बूथ कैप्चरिंग के जो दिमाग में है उसको निकाले। और बूथ कैप्चरिंग अगर कहीं हो रहा है तो मतदाता निडरता के साथ वहां पे खड़ा हो। अगर कोई कैप्चरिंग करने का प्रयास भी कर रहा है कि नहीं आपको ईवीएम के पास नहीं जाना है, तो मतदाता वो पूरे गांव के लोग उसको नकार दे कि हम नहीं जाएंगे मतदान में और उसी समय वहां पे बैठ जाए, तो बूथ कैप्चरिंग रोका जा सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो आज तौर और तरीके बदले हैं, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
जी सर, चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग आपने अभी बता दी है, लेकिन क्या एक आम मतदाता बूथ कैप्चरिंग को कैसे समझ रहा है और क्या सर जो चुनाव आयोग है वो क्या निष्पक्ष रूप से चुनाव की कल्पना तो करता है पर उसमें जो ये बूथ कैप्चरिंग होती है उसके बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और चुनाव आयोग की जिस तरीके से जाँच की मांगे उठती है या जाँच होती है तो उससे क्या बूथ कैप्चरिंग किस रूप में देखते सर?
मतदाता अगर जागरूक होगा योगेश भाई तो बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। मतदाता अगर मजबूत होगा तो बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। बूथ कैप्चरिंग उसी कंडीशन में होगी जब मतदाता ढोलमूल रवैया अपनाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि चुनाव आयोग कोई लल्लू पंजू आयोग नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है और उसके पास बहुत सारे पावर है, बहुत ताकत है, ब्रह्मास्त्र एक प्रकार से। तो चुनाव आयोग अगर सख्ती से निर्णय ले ले तो बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकता है। परंतु आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वर्तमान में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्यपाल, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, इन सभी का एक प्रकार से राजनीतिकरण हो गया है और ये लोग उन्हीं के पक्ष में काम करने का काम कर रहे हैं जो सत्ता में है। आपको यह देखेंगे योगेश भाई कि आज दो संस्थाएं, एक राज्यपाल और एक चुनाव आयोग, ये दोनों जो है सत्ताधारी दल के दफ्तर के बाबू की तरह काम करने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल भी आज निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग भी निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है। और तीसरा जो न्यायपालिका है, जो संविधान की संरक्षक होती है, वो भी आजकल निष्पक्ष नहीं रह गई है। उसके जज लोग पहले ही रिटायरमेंट होने से पहले तय कर लेते हैं कि हमको किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, हमको किसी बहुत बड़े आयोग का प्रेसिडेंट बनाया जाए, हमको किसी आयोग में रख लिया जाए, हमारे लिए कोई अलग से आयोग बनाया जाए, या सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था करे। आपको ये पता होगा योगेश भाई कि न्यायाधीश सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ा पद होता है, परंतु आज तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहे हैं और उसे चुन करके जा रहे हैं। तो एक प्रकार से पूरे तंत्रों का राजनीतिकरण हो गया है, जो मतदाता के दिमाग में भरने का काम किया जा रहा है कि नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, परंतु हो नहीं रहा है ये, क्योंकि सारी संस्थाओं के ऊपर एक तानाशाही रूप से सरकार का पहरा लगा दिया गया है और संस्थाएं वही कह रही है जो सरकार करने का काम करता है। तो इसमें यह कह देना कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वह निष्पक्ष नहीं है, जबकि संविधान में चुनाव आयोग को बहुत शक्ति दिया गया है, और चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होकर के काम करने लगे तो वास्तव में चुनाव सही हो जाएगा। आप देखे होंगे योगेश भाई कि चुनाव आयोग एक मानक तय करता है कि आपको इतने पैसे में लोकसभा लड़ना है, इतने पैसे में विधानसभा लड़ना है, परंतु उसके कई गुना खर्चा किया जाता है। आज तो अरबों रुपया खर्चा करके लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, 50-50 करोड़ रुपया लोग खर्चा करके विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नहीं बांट रहे, शराब से लेकर के, दारू से लेकर के, कपड़े से लेकर के, पैसे से लेकर के बांटा जा रहा है। क्या यह चुनाव आयोग को नहीं दिखता है? चुनाव आयोग को सब दिख रहा है, परंतु चुनाव आयोग परेशान किसको करता है? छोटे दलों को। चुनाव आयोग परेशान किसको करता है? निर्दलीय प्रत्याशियों को। यह भी एक प्रकार से मिला जुला खेल है कि चुनाव को किस प्रकार से प्रभावित करके सत्ताधारी पक्ष के पक्ष में चुनाव को ले जाया जाए और उनको जिताया जाए। तो आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष होना भी नहीं चाहता है, जबकि वो एक संवैधानिक आयोग है, उसकी जिम्मेदारी है। और यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता है तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है। परंतु आज आप देखेंगे कि इन सारी संस्थाओं का राजनीतिकरण हो गया है, और उससे भी ज्यादा इन सारी संस्थाओं के अंदर कहीं ना कहीं तृष्णा जग गई है कि हमारे लिए क्या होगा, और ये सारे सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं।
जी सर, सर अभी हाल ही में देखते होंगे आप कि सर किसी भी पार्टी के कोई प्रतिनिधि को अगर ईडी सीबीआई का समन्वय आ जाता है, और आपने देखे होंगे चाहे संजय सिंह जी हो चाहे सुसोदिया जी हो, इनकी जिस तरीके से जांच प्रक्रिया, और इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन जांच एजेंसियों को कड़े कटघरे में खड़ा किया था, तो इसको लेकर क्या इस तरीके की भी एक तरीके से कैप्चर होते हैं क्या?
इसके दो कारण है, ईडी, सीडी, सीबीआई और जो भी संस्थाएं छापा मार रही है, इसके दो पहलू योगेश भाई।
जी
एक तो सरकार चाह रही है तो छापा हो रहा है, और दूसरा आप देखिए कि अधिकांश छापा किसके यहाँ पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं करप्ट है, और करप्शन, जो करप्ट लोग हैं उनपे सरकार दबाव बना रही है कि आप जिस दल में, उस दल को छोड़कर हमारे साथ आ जाइए। तो सरकार जो है इन संस्थाओं को प्रभावित कर रही है। मैं पहले भी बोला कि इन संस्थाओं का राजनीतिकरण कर दिया गया है। आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था कि जो यह सीबीआई है यह सरकार की तोता होती है, और आज वही तोता की तरह काम कर रही है लोग, सारी संस्थाएं। तो आज जो ईडी और सीडी का छापा पड़ रहा है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज इनकी सरकार ये छापा मरवा रहे, परंतु भाई छापा मार रहे हैं या जिनके घर में बड़े बड़े पैसे पकड़े जा रहे, ये भी तो एक प्रकार का अपराध ही हो गया भाई।
जी
अभी वो झारखंड में किसी नेता के पास 400-500 करोड़ रुपए उसकी अलमारी में पकड़ी गई, इतने पैसे कहाँ से आ रहे? लालू जी के घर पे छापा पड़ रहा है कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, उन्होंने किया है घोटाला। तो देश भर के जितने घोटालेबाज है, अगर उनके ऊपर छापा पड़ रहा है ईडी सीडी का, तो अच्छी बात है, एक पारदर्शी आना चाहिए। परंतु जो लोग ईमानदार है, जैसे आपने चर्चा किया संजय सिंह का, तो संजय सिंह का इसमें कहीं से कुछ नाम धाम नहीं है। उनको तो सरकार ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करके रखा है कि वही एक पार्लियामेंट मेंबर थे जो सदन में खड़ा होकर के बोलते थे सरकार के खिलाफ। भाई संजय सिंह का न साइन है, न नाम है, न सरकार में है, वो तो कुछ नहीं है। जो है उनको आप जाकर के पकड़ो, तो उनको क्यों पकड़ के लगे कि वो सदन में सरकार के खिलाफ बोलते थे। तो एक प्रकार से सरकार अपने बचाव के लिए बीडीओ सीडी का छापा मरवा रही है, और दूसरी तरीके से देखा जाए तो जो अपराधी है, जो माफिया है, जो धन लूट के रखे हैं, उन पे जो ईडी सीडी का छापा पड़ रहा है, वो ठीक है, होना चाहिए, ताकि भाई ये लोग देश की संपत्ति को लूट के रखे। इसमें दिक्कतें क्या आ रही है कि केवल विपक्षी दलों के सांसदों और विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर छापे पड़ रहे, जबकि पक्ष में रहने वाले लोगों के पास भी पैसे की कमी नहीं है, अभी अपराधी नहीं कम नहीं है, और इनके पास भी दूसरे तरीके से पैसे आए हुए कम नहीं, इनके पास भी काला धन बहुत सारा है। आप उदाहरण ले लीजिए कि मोदी जी ने रैली किए थे मध्य प्रदेश में, और वहां से संदेश भेजे कि महाराष्ट्र में 70-70 हजार करोड़ रुपए के घोटालेबाज है। इनडायरेक्ट उन्होंने अजीत पवार का नाम लिए थे, और अजीत पवार दूसरे दिन ज्वाइन कर लिए भाजपा, तो उनका पूरा क्लीन चिट हो गया, वहां का छगन भुजबल ज्वाइन कर लिया, क्लीन चिट हो गया। तो यह सरकार का रवैया है कि विपक्षी दलों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे मरोड़ा जाए, कैसे खत्म किया जाए, यह गलत है, लोकतंत्र के लिए गलत है, होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा यह कहने का मतलब योगेश भाई कि विपक्ष के लोगों को भी इतने करप्शन नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर ईडी और सीडी का छापा का नौबत आए। हमारे नेता है वर्तमान में रघु ठाकुर,
जी
जो जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे, अपने हाथ से टिकट लोगों का फाइनल करते थे, और वह देश भर में खुलकर के चैलेंज करते हैं कि हमारे ऊपर ईडी और सीडी का छापा मार के दिखवाओ, और सबसे ज्यादा अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलने का काम कर रहा है तो रघु ठाकुर कर रहे हैं, परंतु सरकार उनके ऊपर नहीं दबाव डाल पा रही है। क्यों? क्योंकि ईमानदार आदमी है, और कपूरी ठाकुर के दोस्त है, राम मनोहर लोहिया के शिष्य है, गांधी जी को मानते हैं। तो वास्तव में जो लोग गांधी जी को मानेंगे, लोहिया को मानेंगे, जयप्रकाश को मानेंगे, कपूरी को मानेंगे, उनके ऊपर छापा पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई उनकी राजनीति साफ है, उनकी राजनीति एकदम खींची हुई लाइन है, उसमें पारदर्शी है। तो सरकार एक तो अपने विरोधियों के ऊपर छापा मरवा रही है, दूसरा की जो करप्ट लोग है उनके ऊपर छापा मरवा रही है, और तीसरा की सरकार विरोधियों को समाप्त कर देना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। यह भी एक प्रकार से मतदाता का माइंड सेट करने का तरीका है कि सरकार के पक्ष में किस प्रकार से वोट लेकर के जाया जाए, परंतु यह रास्ता लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है योगेश भाई।
सर, मेरा अंत में संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा सर, कि क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को कितने अहम मानते हैं आप?
स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र का आधार ही सहमति और असहमति है योगेश भाई। अगर लोकतंत्र में सहमति और असहमति नहीं है तो लोकतंत्र नहीं हो सकता, और सहमति असहमति उसी समय आएगी जब विपक्ष होगा। विपक्ष केवल दल नहीं होता है, विपक्ष एक आपको रास्ता दिखाने वाला मार्ग भी होता है। विपक्ष को भी चाहिए कि वो भी सकारात्मक रहे। विपक्ष का काम यह नहीं कि केवल सरकार का विरोध करे, विपक्ष का यह काम है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे और सही को सही बोले। एक मिनट समय दे दीजिए, मैं आपको एक उदाहरण से बता देता हूँ कि एक बार देश की पार्लियामेंट चल रही थी, और उस समय प्रेसिडेंट थे पार्लियामेंट के रवि राय, और उसमें मधु लिमे सदन में बैठे हुए थे। हुआ क्या कि सदन समाप्त कर दी गई, सत्र समाप्त हो गया, और जब लिमे जी अपने घर पहुंचे तब उनको पता चला कि अरे बजट अनुदान तो पास ही नहीं किया गया पार्लियामेंट में। तो उन्होंने रवि राय को फोन लगाया और बोले, अध्यक्ष जी गलती हो गई है कि कल अपन देश के लोगों को पेमेंट कहाँ से दे पाएंगे, अपन तो बजट अनुदान पास ही नहीं किए। तो फिर रवि राय ने प्रधानमंत्री जी को फोन लगाया, और पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर कि टेम्पू पर ऑटो बांध करके पूरे दिल्ली में मुनादी कराई गई कि जो जो संसद है पार्लियामेंट पहुंच जाए, क्योंकि अपने को सत्र में चर्चा करना है, बहस में भाग लेना है। और 12 बजे रात को सत्र चालू हुआ और अनुदान बजट पास हुआ, और सुबह लोगों को पेमेंट दिया गया। आज के कंडीशन में क्या होता है योगेश भाई, आज के कंडीशन में विपक्ष इसको मुद्दा बना देता, जबकि मधु लिमे ने मुद्दा नहीं बनाया, बोले ये देश की बात है, इसलिए उन्होंने सरकार को सलाह दी और सरकार को मनवाए। तो विपक्ष की भी एक भूमिका होती है कि वह सकारात्मक रहे और नकारात्मक होकर के काम न करे। तो विपक्ष की बहुत जरूरत होती है, विपक्ष के बिना सरकार नहीं चल सकती है, परंतु यह सरकार और विपक्ष दोनों की कमियां है कि दोनों सिर्फ आलोचनाओं में विश्वास कर रहे, समालोचना में विश्वास नहीं कर रहे।
जी, ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर चुनाव और बूथ कैप्चरिंग किस तरीके से होती है इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, आपको भी नमस्कार।
जी मोबाइल वाणी सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।